नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस विशेष कार्यक्रम जो ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय से फेसबुक और यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव देख रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है संपूर्ण योग और ये है हमारा 21 दिवसीय योगा चैलेंज यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम ये छोटा सा कार्यक्रम जिसमें 21 दिनों तक हम लगातार योग के संपूर्ण स्वरूप को समझने और उसे जीवन में अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज की यह विशेष पहल है कि हम सबके जीवन में योग एक अभिन्न अंग बन जाए, हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाए, ताकि हम योग से शारीरिक स्वास्थ्य तो पाए ही मगर योग के संपूर्ण स्वरूप में जीवन में हम आनंद भी लें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें और अपने आध्यात्मिक उन्नति को भी करते रहें। योग इसी साधना का नाम है। आइए योग से जुड़े हुए इन तीनों आयामों को आज हर दिन की तरह फिर से अभ्यास करते हैं। शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के पहले हिस्से से जो है योगासन यानी फिजिकल योगा के बारे में और इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे योगाचार्य हरीश वैद्य जी जो हमें योगासन से जुड़े हुए प्रश्नों पर उत्तर भी देंगे। अगर आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे अपने प्रश्नों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, भले फेसबुक या यूट्यूब जहां पर भी आप कार्यक्रम देख रहे हैं वहां से प्रश्नों को उठाया जाएगा और हरीश वैद्य जी से हम सवाल जवाब करेंगे। और आज योगासनों के बाद थोड़ा बोध सुनकर प्रश्नोत्तर करके फिर कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम मेडिटेशन यानी राजयोग ध्यान की साधना भी सीखेंगे। तो पूरा कार्यक्रम लगभग 30 से
45। ओम शांति, वंदे मातरम। आज हम पीठ के बल लेटे हुए जो आसन कर सकते हैं उसका अभ्यास करेंगे। मैं आज वजन घटाने की कला सिखा रहा हूं। एक है उत्तान पादासन, फिर है पूर्ण उत्तान पादासन माना अर्धहलासन है, फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले आप इस आसन में आ जाइए, शवासन में आ जाइए, सीधा लेट जाइए, कुछ सॉफ्ट बिछाइए जमीन पर। जैसे कौन न करे पहले ये सुन लेना, जो माताएं बहनें पीरियड्स में हैं वो नहीं करेंगे, जिन्होंने गर्भधारण किया है वो नहीं करेंगे, जिनको लीवर में प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, प्लीहा में स्वेलिंग है वे लोग नहीं करेंगे, पेट में कहीं भी स्वेलिंग है तो नहीं करेंगे, जिनके पेट के रिलेटेड कोई ऑपरेशन हो गया है, जिनको हार्ट के रिलेटेड ऑपरेशन हो गया है, जिन लोगों ने स्टेंट डाला हुआ है शरीर में कहीं भी लीवर में या हार्ट में वे लोग नहीं करेंगे, जिनको लोअर में ऑपरेशन हो गया है या कोई हड्डी वगैरह डाली हुई बाहर से कोई औजार डाले हैं, जिनको पैरों में फ्रैक्चर है या घिसाई हो गई है, कोई सड़िया वगैरह डाला है, फॉरेन पार्ट डाला है, वे लोग नहीं करेंगे। बाकी सब लोग कर सकते हैं। ये है, पहले हम उत्तान पादासन बता देते हैं। अब बहुत ध्यान से करना, देखो बहुत मजा आ जाएगी आपको। पहले दोनों पैर चिपका देंगे, घुटने से घुटना, पंजे से पंजा, दोनों हथेलियां उल्टी जमीन पर। अभी पूरी सांसों को आप बाहर निकाल लेंगे, टोटल सांसों को बाहर निकालते हुए दोनों पैर एक साथ जमीन से एक फुट ऊपर उठाइए, 45 अंश का कोना बनाइए, बस ऐसे बिल्कुल स्थिर पकड़े रहिए 20 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बोलो आप कांप गए कि नहीं? पूरा शरीर कांपता है, कंपन हो जाता है पूरे शरीर में, तो जो एक्सेस फैट है ना वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये आप 3 से 5 बार करना। जो लोग बहुत मोटे हैं वे लोग सांसों को बाहर निकालें, जो लोग दुबले पतले हैं, क्रूश काया है, वे लोग सांसों को अंदर भरेंगे। ये ख्याल थोड़ा ध्यान में रखना, भूल मत करना। मोटे लोग अंदर सांस भर के करेंगे तो और पेट मोटा होगा, पतले लोगों को ही अंदर सांस भरना है। ये 3 से 5 बार करना 20 सेकंड के लिए। अभी अर्ध हलासन करते हैं, जिसको पूर्ण उत्तान पादासन भी कहते हैं। चलिए, पूरी सांसों को बाहर निकालते हुए दोनों पैर 90 एंगल पर उठाएंगे, ऐसे इस प्रकार से सीध में उठाएंगे और पैरों को ऐसे रखिए। ये हलासन हो गया, इसको पूर्ण उत्तान पादासन भी कहते हैं। पूरा प्रेशर पेट पर ही आएगा, वक्ष स्थानों पर आएगा, छाती पर आएगा, पेट पर आएगा, पाचन पर आएगा, आंतों पर आएगा और पैरों पर तो आएगा ही, गर्दन पर भी आएगा। पूरा शरीर कांपेगा। ये वजन घटाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त आसन है। धीरे धीरे पैर नीचे ले जाइए, आहिस्ते आहिस्ते, फेंकना मत, खुद के पैर हैं। और इसी से आपके पेट ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होगा कि मेरा अनुभव है और मेरा दावा भी है, 15 दिन में अगर आपने ये रोज किया 5-5 बार तो कम से कम 3 इंच तक पेट आपका कम होगा, वजन भी 3 से 5 किलो आपका कम होगा। इसके लिए थोड़ा कपालभाति करना जरूरी है। अच्छा, अभी वजन घटाने के लिए जो ब्रह्मास्त्र का काम करता है वो है ये आसन, चलित पूर्ण उत्तान पादासन। माना चलित फॉर्म में ऊपर नीचे पैर ले जाने, एक ही बार सांस बाहर निकाल दो, एक बार सांस बाहर निकाल के बाहर रोकिए और एक साथ, रितु बहन जी बता रही है, पैर ऊपर नीचे जमीन से चिपकाए बिना ऊपर आइए, जमीन से नहीं चिपकाना है तो ही प्रेशर क्रिएट होगा। एक साथ में आप 10 बार 15 बार, लेकिन पहले दिन तो 5-5 से ही शुरू करना, आप 10 बार कर सकते हैं। अगर आपकी मास्टरी आ जाती है तो स्पीड में बढ़ाइए, आप स्पीड बढ़ाइए, 10 बार 15 बार कीजिए, फटाफट वजन आपका कम होगा, पेट कम होगा, पाचन स्ट्रांग हो जाएगा। जो लोग मोटे हैं उनको तो बहुत ही तेजी से फायदे होते हैं। सुबह शाम थोड़ा गुनगुना पानी पीना, लौकी और हरे धनिया का रस पीना रोज सुबह, फटाफट आपका वजन कम होगा। ये जो 3 आसन बताए हैं आपके लिए तो बहुत ही पावरफुल है, ये वजन घटाने की श्रेष्ठ और दिव्य कला है। आप निश्चित रूप से इसका अभ्यास करेंगे, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप इस आसन को करें और अपने वजन को कम करें। पूरा श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूं। जगत जननी भारत माता को मैं प्रणाम करता हूं और आज के विषय के समापन की आज्ञा चाहता हूं। अस्तु, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का और ऋतु जी का, और बहुत ही अच्छे से हमें ये लेट कर करने वाले आसनों में से 2 आसन हमें आज सीखने को मिले हैं। दोस्तों, आसन सीखना क्यों आवश्यक है ये सब आप सब जानते हैं कि हम सब फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आसन सीखते हैं। तो योगासन जब संपूर्ण योग का एक हिस्सा समझते हैं तो योगासन ही योग नहीं है, आसन योग के अलग अलग विधाओं में से सिर्फ एक है और वो हमारे संपूर्ण विकास के लिए मदद करता है। और मुनि पतंजलि ने इसीलिए मनुष्य के संपूर्ण विश्वास के हिसाब से योग के सूत्र गढ़े हैं। उन सूत्रों में से एक सूत्र आसन भी है। आसनों में हम ये चीजें सीख रहे हैं और मैं समझता हूँ इसे करते करते हम अपने हेल्थ बेनिफिट्स भी रीपिन करेंगे, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। चलिए हम सीधे जुड़ते हैं हरीश वैद्य जी से, उनसे आज के विषय पर बोध भी हासिल करेंगे और उनसे प्रश्नोत्तर भी करेंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्नों को हम सीधे उन तक कनेक्ट करेंगे, आपके प्रश्नों को स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। जैसे अगर आप कुछ कमेंट भी कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पे अपने खुद के नाम देख पा रहे होंगे, तो आपके नाम को भी दिखाया जाएगा और आपके कमेंट्स को भी दिखाया जाएगा। अगर आप कुछ फीडबैक लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों को, जैसे अभी आप अशोक जी का कमेंट पढ़ पा रहे हैं, वैसे ही हम अनेकों के कमेंट्स भी पढ़ पाएंगे और उनके प्रश्नों को भी यहीं से लेकर हम हरीश वैद्य जी से पूछेंगे। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं हरीश वैद्य जी से आज के बोध के विषय में जानकारी लेने के लिए, हरीश वैद्य जी के पास सीधे बड़ौदा। नमस्कार हरीश वैद्य जी, स्वागत है आपका।
वंदे मातरम, नमस्कार।
नमस्कार,
आप सबका भी अभिवादन करता हूँ सुनने वालों का। हाँ जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी हरीश वैद्य जी से योगासन तो पहले दिन से सीख रहे हैं और आज और कल दो दिन हमारे पास ऐसे होंगे जहां पर हरीश वैद्य जी हमारे प्रश्नों के भी उत्तर देंगे योगासन सिखाने के साथ साथ। इससे पहले कि हम प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ें, आप अपने प्रश्न लिखना शुरू कर सकते हैं। हम 10 मिनट बाद प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे, बट उससे पहले पहले 10 मिनट में मैं हरीश वैद्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सभी साथियों के लिए आज जो बैठ कर करने वाले आसन है उस पर क्या ध्यान देना है, कैसे उसके बारे में हमें अभ्यास में कितनी किन चीजों का ध्यान रखना है, कितनी देर करना है, करने के बाद क्या करना है, इसके बारे में आज थोड़ा इन योगासनों के बारे में बोध देंगे। हरीश वैद्य जी
जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका अभिवादन। देखिए, बैठकर करने वाले आसनों में आसनों का जो ध्येय है वो तो केवल एकाग्रता लाना, ज्यादा से ज्यादा बैठ सके साधना के लिए उतनी क्षमता हासिल करना, और शरीर के जो 7 चक्र है मूलाधार से लगाकर सहस्त्रार तक उसको एक्टिवेट करना। आप सबको मालूम है कि जो ये 7 चक्र है वो आत्मा के स्पर्श केंद्र है शरीर में, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन अनुभव में आते हैं। तो वो सभी 7ों स्पर्श केंद्रों को, 7ों चक्रों को सक्रिय बनाना, जानदार बनाना, ये ध्येय है। लेकिन उसके लिए हमें स्थिरत्व हासिल करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे ही बैठे होते हैं तो उनके पैर हिलते रहते हैं, उनके हाथ हिलते रहते हैं, दोनों पैर ऊपर नीचे ऊपर नीचे बैठे बैठे उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, वो हिल रहे हैं, बिना उस आत्मा की परमिशन से शरीर हिल रहा है। तो ये प्रिलिमिनरी लेवल का डिस्टर्बेंस है बॉडी में कि वो उनको मालूम नहीं है कि उनका शरीर हिल रहा है। इसलिए आसन जो है वो इसीलिए सिद्ध करने चाहिए कि हम लंबे से लंबे समय तक बैठ सकें और एकाग्रता हासिल कर सकें। ये पूरे जो 195 सूत्रों का जो पातंजल योग सूत्र है उसका केवल एक ही ध्येय है कि व्यक्ति केवल अपने स्वभाव में स्थित हो, आत्मा में स्थित हो और आत्मा से फिर परमात्मा में स्थित हो। इसलिए 4 आयामों में उन्होंने ये बताया था। तो आज जो हम आसनों की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बैठकर करने वाले आसनों की श्रृंखला है, बहुत सारे आसन है उसमें, लेकिन कुछ ऐसे आसन आप सिद्ध कर ले ताकि आप लंबा बैठ सको, अन्यथा फिर हिलना डुलना चलता रहेगा, सभी चक्र सेट हो जाएंगे। जैसे पद्मासन है, स्वस्तिकासन है, सिद्धासन है, अर्ध पद्मासन है, वज्रासन है, शशांकासन है, वक्रासन है, मत्स्येंद्रासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, सुप्त वज्रासन है, मत्स्यासन है, गोरक्षासन है, भद्रासन है, गर्भासन है, बद्ध पद्मासन है, स्वपाद नमनासन है, सिंहासन, वकासन, आकर्ष धनुरासन, पूर्णमनासन, गौमुखासन, दंडासन, विश्रामासन, कितने गिनो, ढेर सारे आसन है, सब बैठे बैठे करने वाले आसन है। लेकिन मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। वास्तव में क्या है, अगर आपको योग की कला सिद्ध करनी है, योग के हमारे योगालय में एक नियम है, अगर कोई भी योग सीखने आता है तो सबसे पहले हमारे जो योग इंस्ट्रक्टर है या योग प्रशिक्षक है वो उनसे केवल एक ही आसन कराते हैं, फिर तय करते कि इसको किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आपने सीधा बैठ जाना है बिल्कुल सुखासन में, दोनों हाथ इस तरह से पीछे लॉक कर दे, पीछे लॉक करके सांसों को पूरा बिल्कुल बाहर निकाल दे और जो बैठक है वो जमीन से चिपकी रहेंगी और धीरे धीरे आप नीचे झुकेंगे। नीचे झुकते झुकते सबसे पहले आप कपाल, फिर नाक, फिर दाढ़ी और फिर बारी बारी से कान जमीन को चिपकाएंगे। जब आप जमीन पर नाक कान वगैरह स्पर्श कराओगे तब याद रहे बैठक का हिस्सा जमीन से चिपका रहे। ये अगर आप कर पाए, ये भू नमनासन है, अगर आप ये कर पाए तो समझो आपको योग के बहुत कम आयामों की जरूरत है, आपका शरीर आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो उसमें से बहुत सारे निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे या तो आपका पेट बड़ा है, या तो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिल्कुल स्टिफ हो गया है, या तो आपकी रीढ़ की हड्डियां स्टिफ हो गई है, या घुटने आपके स्टिफ हो गए हैं, ढेर सारी संभावनाएं निकलती हैं एक ही आसन से। इसलिए हमने हमारे इंस्ट्रक्टरों को ये बताया कि ये एक आसन तय कर लो, उनके पास से करा लो, ताकि उनको मालूम पड़े कि फिर क्या कराना है उनको। तो आप भी ये होमवर्क के रूप में कर लो और इसका जरूर अभ्यास करना ताकि ये आसन सिद्ध हो जाए। फिर अगर आपको लंबे समय मेडिटेशन के लिए बैठना है, या तो आप पद्मासन सिद्ध कर लो, या सुखासन सिद्ध कर लो, स्वस्तिकासन सिद्ध कर लो। समझो आप पद्मासन में बैठे हैं तो सारा प्रेशर मूत्राशय की आसपास जो मेन नलिकाएं है उस पर एड़ी के द्वारा प्रेशर आएगा और उसमें हमारी बीज शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा। और दूसरा सबसे पहला फायदा ये होगा कि हमारा जो मूलाधार चक्र है गुदा के पास, उसकी सारी शक्तियां ऊपर की ओर उठेगी, इसलिए सहस्त्रार तक जाएगी, हमारा हमारा जो ऊर्ध्वकरण शुरू हो जाएगा, दिव्यकरण शुरू हो जाएगा। बाबा का जो होमवर्क है कि मनुष्य से देवता बनना है, इसलिए बाबा ने देखो 8-8 घंटे की भट्टी करने के लिए बोले कि 8 घंटा योग करो, 8 घंटा कर्मणा करो, 8 घंटा विश्राम करो, 3 आयामों में दिनचर्या बांट दी है। तो आप लंबा बैठ करके अगर आपने किया, क्योंकि बाबा ये सारे भक्ति वाले जो सिद्धांत है ये चक्रों के वगैरह, उसमें बाबा ने डिटेल में जाने के लिए मना किया है, लेकिन उसके पीछे का हेतु यही है, अगर आप लंबा बैठ सके ना तो आपकी सारी शक्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाएंगी। और प्रिय ओशो ने तो ये बताया है एक बार कि जिन लोगों का ये आखिरी जन्म है उनके सभी चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें तो भगवान ने बता दिया है कि ये आपका आखिरी जन्म है, तो हमारे तो सारे चक्र एक्टिवेट होने ही है, थोड़ी सी ही साधना हमें करनी है। इसलिए बाबा ने हमको तो यहां तक कह दिया है कि आप सोते सोते भी भले याद करो, लेकिन मैं मानता हूं कि बैठकर करने वाले आसनों में कुछ तो आसन आप सिद्ध कर लें, कुछ ऐसे आसन है जो आप नहीं कर पाएंगे। वो छोटी उम्र में ही अगर आपने करना शुरू किया तो आप कर पाएंगे, अन्यथा बड़ी उम्र में आप अगर करने चाहोगे, समझो पद्मासन नहीं होता है और आप करने जाओगे तो घुटने में और कहीं ना कहीं आप नुकसान करके बैठोगे। इसलिए ऐसे आसन जैसे गर्भासन है आपसे नहीं होगा, लोलासन है आपसे नहीं होगा, अगर पहले से किया है तो हो सकता है। इसलिए आसनों की श्रृंखला में जैसे बद्ध पद्मासन है वो भी बहुत डिफिकल्ट है, उसमें ये पूरा हिस्सा आपका जो है वो एकदम स्टिफ होना चाहिए, कम होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। इसलिए योग की परिभाषा में हमारा वजन भी इतना ना बढ़े, ना तो बहुत कम हो, ना तो बहुत ज्यादा हो, सम्यक हो। ये सब जब आप कोई ना कोई आसन सिद्ध करोगे ना तब ही हो सकता है। सिद्ध करने का मतलब एक ही पोजीशन में लंबा समय आप बैठ सको, फिर भी आप थको नहीं, फिर भी आपको दिक्कत ना हो, ये उसके पीछे का भाव है। और सबसे मेन भाव तो आपके चक्रों को एक्टिवेट करना है, आपके पाचन को स्ट्रांग बनाना है, सॉलिड बनाना है, आपकी रीढ़ की हड्डियां बिल्कुल स्ट्रांग बनानी है। और अगर ये आप कर पाए तो फिर तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम ये करने में सक्षम हो पाए ना तो फिर हम मेडिटेट हो पाएंगे। कई लोग तो 10 मिनट भी एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकते, जैसे आजकल के बच्चे आप देख लो, आप खाली सूक्ष्म रूप से अवलोकन करना वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं बैठ पाएंगे। और स्थिरत्व का हुक्म हमें भगवान ने दिया है कि आप स्थिरता को पाइए, क्योंकि हमें लंबे समय तक योग करना है। इसलिए भगवान ने जैसे आज का मानसविद कहते हैं, आज के संशोधनकार मन के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि स्कूलों में भी कोई भी बच्चा किसी एक विषय पर 45 मिनट से ज्यादा नहीं सुन पाएगा। इसलिए स्कूलों में या कॉलेजों में लेक्चर्स के जो समय है वो भी 45 मिनट के ही है। पर भगवान ने हमारे लिए हमारा अमृत वेला भी, जो मेडिटेशन का फिक्स समय है भगवान के साथ हमारी जो मुलाकात है, वो भी 45 मिनट ही तय की है, 4 से 4:45 तक। वाकई में ये ज्ञान आया ऊपर वाले के पास से, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि नहीं 45 मिनट तक आप कर पाओगे। तो रोज बरोज हम किसी एक वरदान पर या कोई एक सूत्र पर भगवान की अभ्यास किया तो निश्चित रूप से हमें उसमें सफलता मिलेगी। आप पद्मासन सिद्ध कर लो तब आपकी भारतीयता के रूप में पहचान होगी। हमारे गुरु कहते थे कि जिसको पद्मासन नहीं आता है वो भारतीय नहीं है। इसलिए आप पद्मासन सिद्ध करें, बड़ी सरलता से हो सकता है, बड़े प्यार से हो सकता है। इसके लिए आप सीधा एक उपाय भी आजमा सकते हो। रोज रात को सोते वक्त नाभि पर ये एरंडी का तेल आता है, कैस्टर ऑयल, वो 4 से 5 बूंद लगाते जाइए और 5-5 बूंदे खाना भी शुरू कर दो रोज रात को। 5 से 10 बूंदे आप उतार दोगे तो सारे जॉइंट की जो स्टिफनेस है बहुत कम हो जाएगी आपकी, और चेहरे पर भी चमक आ जाएगी, पेट भी आपको अच्छे से काम करेगा। 32 फुट लंबी आते हैं पाचन तंत्र हमारा, वो भी अच्छे से फंक्शनिंग करेगा और आपको बैठने में भी दिक्कत कम हो जाएगी।
जी, थैंक यू हरीश जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बताया कि बैठ के करने वाले आसन क्यों आवश्यक है। लोग बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, अब बदलते समय के अनुसार बहुत सारी चीजें भी बदलती जा रही हैं। हम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाने लगे हैं, जमीन पर जैसे आपने बोला कि हमें पद्मासन करने आना चाहिए, बहुत सारे मेरे युवा साथी भी इसमें दिक्कत महसूस करते हैं। हालांकि कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे दोस्तों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। पुनीत खत्री हैं जो YouTube से हमारे साथ जुड़े हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, साइनसाइटिस के लिए कोई उपचार योग का हो तो बताइए प्लीज, ऐसा कहते हैं पुनीत।
अच्छा पुनीत भाई जी, एक तो हमने यूट्यूब पर इसके रिलेटेड एक वीडियो रखा हुआ ही है, हो सकता है तो अगर आपसे हो सकता है तो हस्त पादासन कीजिए और रात को सोते वक्त नाक के अंदर गाय के घी की 3-3 बूंदे रखिए और अदरक तेल में डालकर उसका तेल बनाकर थोड़ा नाक पर लगा दीजिए। बाकी साइनोसाइटिस के लिए हमने एक वीडियो रखा हुआ है, वो 5-6 मिनट का है, वो आप देख लीजिए हरीश वैद्य यूट्यूब चैनल पर। जी सर
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। एक और प्रश्न है, अनु अरोरा हमारे साथ हैं, वो कहते हैं कि प्लीज आंखों को हेल्दी करने के कुछ उपाय बताइए। आजकल तो हम ज्यादातर लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, घंटों घंटों हमें पूरा दिन भर कंप्यूटर पे रहना पड़ता है, तो ऐसे में आंखों को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए?
जी बहुत जरूरी है, सबसे पहले ये है कि आप तो मोबाइल का उपयोग कम कर दीजिए, नहीं तो आंखें कमजोर होना तय है। सर्वाइकल के भी प्रॉब्लम लाइन में ही खड़े होते हैं, आते ही है, ये कन्फर्म है क्योंकि मैं रोज ढेर सारे पेशेंट देखता हूँ। अच्छा आंखों के लिए आपने क्या करना है, एक तो एक कलम लेकर के यहाँ एक छोटी सी बूंद कर दे, ये ऐसी एक बूंद कर दे यहाँ पर, और उस बूंद को आप थोड़ी देर के लिए देखिए, फिर उस बूंद पर दृष्टि हटाए नहीं, सीधा देखिए, उसके ऊपर ही देखिए, करीब लाइए, एक बिल्ल से दूर मत ले जाइए, करीब लाइए दूर ले जाइए, करीब लाइए दूर ले जाइए, फिर इस तरह से बूंद से आप पॉइंट से नजर मत हटाइए, ऐसे ऊपर ले जाइए नीचे ले जाइए, गोल 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 घुमाइए, 5 बार जोर से आंखें बंद कर दीजिए, जोर से खोलिए, जोर से आंखें बंद करिए, जोर से खोले। दिन में कम से कम 4 से 5 बार मटके के पानी से आंखों को धोइए। और दूसरा, रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर डाल के उसको ढक के रखिए, सुबह उस पानी को निताल लीजिए, हिला के 10 मिनट रखिए, फिर निताल लीजिए, पाउडर नहीं आना चाहिए, और इस पानी से आंखों में छालक लगा दीजिए, आपको बहुत जल्दी फटाफट इसके रिजल्ट मिलेंगे। और सुबह की बासी थूक है ना लार, वो भी आंखों के अंदर डालिए, फटाफट रिजल्ट मिलेंगे। जी सर,
ये तो ऐसे बहुत सारे उपचार हैं जो घरेलू नुस्खे हैं, इसको हम पारंपरिक रूप से बहुत बार हमारे दादा नानी से उस जनरेशन में सुनते आए हैं, करते भी आए हैं, पर धीरे धीरे हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, शायद हमें कोई बताने वाला नहीं है या फिर हम इसको भूलते जा रहे हैं।
भरोसा नहीं है, हमारा जो भी है वो ऐसा समझते हैं नई पीढ़ी की अकले ही नहीं है इन लोग को, क्योंकि 20 साल का फासला हो गया ना। मेरा बेटा कितना कंप्यूटर चला लेता है, लैपटॉप चला लेता है, फोन के इतने सारा यूज जानता है, हम इस झंझट वाले नहीं। वो लोग हमको अनपढ़ समझते थे, ऐसा है।
बिल्कुल सही बात है, ये आजकल ये एक ऐसी समस्या है जहां पर हम एक दूसरे की बात को नहीं समझने के कारण हमको लगता है जो हम जानते हैं वो सही है। मगर योग शायद यही सारी चीजें बताता है कि कुछ चीजों का निदान हमारे अपने हाथों में है, वो करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जैसे साइंस यही चीज बताती है कि किसी भी चीज का प्रूफ एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट
ये सवाल पूछा है ना, उनको बताइए कि नाभि पर गाय का घी रखे, आंखें की अगर नस सूख गई है ना, तो नाभि पर गाय के 5-7 बूंदे रखे, ये जो खड्डा होता है ना यहाँ घी रखे, फिर यहाँ हाथों पर, यहाँ और कानों की इस बूट पर आप घी लगा के रात को सो जाइए, फिर देखिए 15-20 दिन में कितने नतीजे आते हैं। कम से कम 3 महीना ये प्रयोग कीजिए। नाभि एक ऐसी चीज है भाई साहब, सबसे पहले अगर माँ के गर्भ में शरीर बनना शुरू होता है ना, तो खाद मुहूर्त नाभि से होता है, नाभि पहले बनती है, और नाभि का पूरे शरीर के सभी सेल के साथ व्यापक नेटवर्क होता है, तो नाभि को मालूम है कहाँ क्या पहुंचाना है। तो इसलिए आपने अगर घी डाल दिया, तो जिन लोगों की आंखों की नसें या कान की नसें सूख रही हैं, शरीर में कहीं भी सूख रहा है कुछ भी, तो वो नाभि को मालूम है वहां तक वो मटेरियल पहुंच जाएगा। अगर मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप में से सारे पुरुष बनियन पहनते हैं भीतर के उपवस्त्र को, और जब सुबह उतारते हो ना, तो नाभि पर एक रुई की छोटी सी गोली मिलेगी आपको। बनियन क्या है कि नाभि के 3 इंच के रेडियस में जब बनियन घिसती है शरीर से, तो उसके जो तंतु निकलते हैं ना, नाभि इकट्ठा कर लेती है और उसको खाने का ट्राई करती है, लेकिन वो हो नहीं पाता है। जो लोग बनियन नहीं पहनते उनकी नाभि से मिट्टी के छोटे छोटे ढेपे निकलेंगे, छोटे छोटे। इसलिए नाभि के इस स्वभाव का अगर हमने उपयोग कर लिया, देखो बच्चा रोता है ना, तो माए क्या करती है, तेल और हींग मिलके लगा देती है, या पानी में हींग डाल के लगा देती है, 10 मिनट में बच्चे का रोना बंद हो जाता है। जिसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, वो अगर नाभि पर रात को दिवेल लगाएगा, एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, तो भी उनको फटाफट फायदे होंगे। ये जादू है सब ये सब।
जैसे आप ये कहते हैं कि ये जादू है, जिन्होंने इस ज्ञान को समझ रखा है तो उसके पीछे के साइंस को समझते हैं, और जो इसको नहीं किए बगैर, एक्सपेरिमेंट किए बगैर ही अगर इस पर प्रश्न उठाएंगे तो शायद ये सही नहीं होगा। दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, बहुत सारे प्रश्न और भी बाकी हैं। एक और साथी ने प्रश्न है कि अनु अरोरा है, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं कार्यक्रम को, बोलते हैं कि एलर्जी के प्रॉब्लम्स के लिए कुछ आसन बताइए, बोलते हैं अगर उनको एलर्जी है तो क्या आसन उनको करने चाहिए, पूछते हैं।
जी नहीं, एलर्जी के विषय में आसन बहुत कम मदद करेंगे, क्योंकि ये तो बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। आप जी के शरीर की बायोकेमिस्ट्री किसी तत्व के प्रति ज्यादा सक्रिय हो गई है, इसलिए इसमें आसन नहीं, थोड़े बहुत मना अनुलोम विलोम करे, भस्त्रिका करे, कपालभाति करे, तो ये मदद रूप हो सकता है। और दूसरा सीरम IgE इसकी रिपोर्ट निकलवाने को बोले और अपने डॉक्टर से मिलने को बोल दे, सीरम IgE।
जी अनुजी, आपको इस विषय पर आपके वैद्य से यानी आपके डॉक्टर से राय लेनी चाहिए और टेस्ट करवा लेनी चाहिए कि आपको किस प्रकार की एलर्जी है, और हालांकि हेल्दी अपने आप को रखने के लिए आपको अनुलोम विलोम इत्यादि प्राणायाम के बारे में ध्यान रखना है। शकुन गौतम हमारे साथ है, फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं। लौकी का जूस बनाने के लिए कच्ची लौकी लें या फिर उसे उबाल कर लें, ऐसे ये पूछते हैं। लौकी का जूस बहुत सारे लोग आजकल पी भी रहे हैं, हेल्दी होता है, सुनने को भी मिलता है।
उसको आपने अगर उबाला, उसको अगर आपने उबाला तो सारी प्रॉपर्टी समाप्त हो जाएगी। जिंदा लौकी को आपने मार दिया, खत्म कर दिया उसको, वो तो जिंदा ही लेना है। रोज सुबह ताजी लौकी ले और उसी का छिलका उतार के उसका रस पीजिए, ताजा ही लेना है उसको, बॉयल नहीं करना है।
बॉयल नहीं करना सर, ठीक है। दोस्तों
अगर इनको ताजा गर्मी है ना, उनको ताजा गर्मी है, तो उसके अंदर 10 ग्राम हरा धनिया भी डालने के लिए कहें, और जिनका ट्राइग्लिसराइड हाई है ना, तो उनको उसमें एक आधी शिमला मिर्च भी डाल दो, एक गाजर डाल दो, तो ट्राइग्लिसराइड तो 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा और 1 महीने तक कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा। जी सर,
जी एक और साथी हैं प्रदीप कुमार जी, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, कहते हैं कि प्लीज इनडाइजेशन का उपाय बताइए। मैं समझता हूँ बहुत सारे साथी आजकल इनडाइजेशन जैसी समस्याओं का इलाज ढूंढ रहे होते हैं, दवाइयां भी खाते हैं, ऐसे में कुछ किया जाए। एक और साथी हमारे शुभम है, वो भी ऐसा ही सिमिलर प्रश्न पूछते हैं, यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ आसन बताइए, ऐसा कहते हैं।
हाँ जी, अभी देखिए सबसे पहले तो इंडाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि हम मुंह का काम पेट से लेते हैं, चबाते ही नहीं है। आप देखिए 2-3 मिनट है, मैक्सिमम 5 मिनट में सबका खाना पूरा हो जाता है, उतार ही देते हैं बिना चबाए। तो एक निवेला आप 30 से 40 बार चबाए, पूज्य पर तावरिया जी तो कहते हैं 40 बार चबाना चाहिए, हम 10 बार डिस्काउंट देते हैं, 30 बार तो चबाइए कम से कम। और आपके खाने में 25 से 30 मिनट लगने चाहिए। एक सिंपल मैं बिल्कुल पावरफुल उपाय बता देता हूं जो घर में ही किया जा सकता है। आप क्या करें कि पुदीना हरा ले लें समान मात्रा में, हरा धनिया ले लें, फिर अदरक ले लें, इन सबको पीस दो और उसकी पेस्ट बना के फ्रीज में रख दो। उस पर लेते समय आप है ना, समझो एक चम्मच आपने ये पेस्ट ली तो एक चम्मच आप पानी लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सिंदौ डाल देंगे हिला के। अगर भूख नहीं लगती है तो खाने के 10 मिनट पहले आप लेंगे, और अगर पाचन ठीक नहीं है तो खाने के 15-20 मिनट के बाद आप उसको चाट जाइए धीरे धीरे। देखो 3 दिन में आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। जी सर।
शुभम, मैं समझता हूँ आपके प्रश्न के लिए भी उत्तर है, और ये सब करके देखने से पता चलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जी
सारा प्रकृति के पास ही इलाज है। आप इतना शर्त है कि आप बस जिंदा खाना खाइए। एक बार एक हुसैनी हॉल में मुसलमान मित्रों के लिए मेरी शिविर थी, मैंने कहा कि जिंदा खाना खाना है तो क्या खाओगे, सबने एक ही जवाब दिया मुर्गी। फिर मैंने पूछा कि भाई जिंदा खाना खाना है तो क्या खाओगे, तो मुर्गी। 3 बार रिपीट किया, फिर मैंने कहा आप में से कौन जिंदा मुर्गी खाता है, तो किसी का जवाब नहीं आया। तो मेरा आप तो मरा हुआ खाना खाते हैं और वो तो डेड बॉडी है, वो तो नहीं खानी चाहिए। जिंदा खाना मतलब भगवान ने जो चीज जैसी बनाई उसी रूप में हम खा सकते हैं, जैसे सब्जी आए है, फ्रूट्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, खजाना है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि समझो गौ माता है, गौ माता कहाँ काजू या बादाम खाने जाती है, पिस्ता खाने जाती है, वो तो केवल हरे रंग का घास खाती है, और घास खाकर भी वो दुनिया की हाईएस्ट कैलोरी वाला दूध देती है, और उसी दूध से बहुत सारी चीजें बनती, घी तक बनता है, पनीर तक बनता है, तो वो तो खाती तो हरे घास है। तो सूर्य की ऊर्जा से जो चीजें बनती है ना, वो अगर हम खाएंगे ना तो हम किसी और टॉनिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा कुदरत ही हमें दे देता है।
जी दोस्तों, एक और प्रश्न आया है, उस प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आर्यन नाम है इनका, आर्यन यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, कहते हैं रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम COVID-19 एंड स्टार्टेड डूइंग नाड़ी शोधन साधना, नाड़ी शोधन करना शुरू किया है इन्होंने, और हाल ही में कोविड से उन्होंने रिकवर किया है। इज इट द बेस्ट योगा दिस टाइम आफ्टर कोविड रिकवरी, और वुड यू सजेस्ट समथिंग एल्स? वो बोलते हैं कि जो योगा नाड़ी शोधन योगा कर रहे हैं वो, क्या वो कोविड रिकवरी के बाद जो कर रहे हैं ये बेस्ट है या इससे भी बेहतर या कुछ और मुझे करना चाहिए, ऐसा कुछ?
आसनों की जो सबसे पहले शुरुआत में श्रृंखला थी ना, उसमें हमने बता दिया है कि यही सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आप जॉगिंग करें, थोड़ा कूदे, सांसों की रिदम को थोड़ा बढ़ने दे, आपके लंग्स माना जो भस्त्रिका है ना, लंग्स को थोड़ा फूलने और संकोचित होने दे, वो हुआ उसके बाद आप बैठ जाइए, फिर लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए 5 मिनट, वैसे अनुलोम विलोम करिए, फिर जो अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन आप कहते हो उसको आप गहरी सांस लेके अंदर रोकिए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड तक रोक सकते हैं बारी बारी से। देखो आप आपका फेफड़ा जो धनवान हो जाएगा, बिल्कुल प्राणवान हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा, पावरफुल हो जाओगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आज इतने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। दोस्तों अगर आपको ज्यादा प्रश्न हैं तो आप बेझिझक प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में डालिए, हम कल के कार्यक्रम में भी उसे इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। समय की सीमा होती है, इसके लिए सारे प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा करना भी मुश्किल होता है, इसलिए हम दो तीन प्रश्नों को एक साथ इकट्ठा करके भी पूछ लेते हैं। कभी कभार हो सकता है कि हमसे आपका नाम लेना छूट जाए, मगर स्क्रीन पर आपके नाम हमेशा दिखते रहते हैं। तो हरीश वैद्य जी, आज आप सीधे हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में और हमारे दोस्तों को बोध दिया आज का, और साथ साथ उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी लाइव कार्यक्रम में, तो हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।
इस संवाद का श्रेय मैं भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।
थैंक यू। मित्रों, ये थे हरीश वैद्य जी जो हमारे साथ सीधे बड़ौदा से जुड़े थे, और लाइव ये कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास यही है कि हम आपको जोड़ सके और साथ साथ आप इसके पूरे बेनिफिट्स ले सकें इस कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चलते हैं, करते हैं राजयोग ध्यान यानी मेडिटेशन, क्योंकि पतंजलि के सूत्रों में मेडिटेशन पर भी ध्यान खिंचवाया गया है, यानी मन के लिए भी योग बताया गया है। तो अगर आपको मेडिटेशन नहीं भी आता है तो घबराएं नहीं, हम सब मिलकर साथ में ये गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। तो आइए हो जाते हैं तैयार और करते हैं मेडिटेशन अगले 5 मिनट के लिए कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में।
ओम शांति। आइए कुछ समय के लिए अब हम राजयोग की सुंदर यात्रा का आनंद लेते हैं और अपने सच्चे मित्र खुदा दोस्त के साथ का अनुभव करते हैं। स्वयं को इस शरीर रूपी रथ का मालिक, इस रथ का रथी, आत्मा मालिक समझकर अपने मन और बुद्धि की शक्ति को स्वयं की ओर एकाग्र करिए और अपना सारा ध्यान अपने स्वयं की ओर ले आइए। मैं आत्मा, प्रकृति से बने 5 तत्व रूपी शरीर को चलाने वाली मन, बुद्धि और संस्कारों की मालिक अविनाशी शक्ति ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। धीरे धीरे इस देह के भान को, इस शरीर की स्मृति को भूलते हुए मैं आत्मा अपने खुदा दोस्त से मुलाकात करने जाती हूं। साकारी शरीर और साकारी दुनिया के वायुमंडल से परे निराकारी दुनिया में मुझ आत्मा के असली घर में, जहां मेरा खुदा दोस्त है जो बिल्कुल मेरे ही समान ज्योति बिंदु स्वरूप है, उससे मिलन मनाने पहुंचती हूं और अपने सामने सर्व शक्तियों के पुंज, सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तिवान परमात्मा को अपने मन की आंखों से देखती हूं। खुदा मेरा दोस्त है, ये संकल्प ही मुझे कितना आनंदित कर रहा है। ऐसे खुदा दोस्त को सामने देख मेरा मन खुशी से भरपूर हो गया है। ऐसा सच्चा मित्र तो सारी दुनिया में भी, कितनी भी मेहनत करो लेकिन मिल नहीं सकता। ऐसे मित्र के समीप पहुंचकर मैं भी उसके संग के रंग में रंगती जा रही हूं। मेरा खुदा दोस्त जो रूप में ज्योति बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु समान है, उसके रंग में रंगकर मैं भी अपने अंदर उसकी शक्तियों और गुणों का अनुभव कर रही हूं। ऐसे सच्चे दोस्त का साथ पाकर, ऐसे सच्चे दोस्त का हाथ पकड़कर, जैसे मैं अपने सारे दुखों को भूलती जा रही हूं। कितना सुख है इस मुलाकात में, कितना आनंद है ऐसे साथ में। ऐसा साथी, ऐसा मित्र जो निस्वार्थ है, जो हर घड़ी हर संकल्प में हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए सदा तैयार है, सदा हाजिर रहता है। जिस घड़ी मैं बुलाऊं उस घड़ी मुझे मदद देने के लिए पहुंच जाता है। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी तकदीर कि मुझे ऐसा खुदा दोस्त मिला। ऐसी दोस्ती तो और किसी भी युग या किसी जन्म में प्राप्त नहीं हो सकती। इस दुनिया में चाहे कितना भी संबंध किसी का प्यारा हो, लेकिन भगवान जैसा साथ, भगवान जैसा साथी संबंधी और कोई हो नहीं सकता। मैं अपने दिल की हर बात अपने खुदा दोस्त को सुनाकर बिल्कुल हल्की होती जा रही हूं। खुशी के पंख लगाकर जैसे खुले आकाश में उड़ती जा रही हूं। अपने अंदर अपने खुदा दोस्त समान सर्वगुण और शक्तियों से भरपूर हो, मुझे ऐसा लग रहा है जो पाना था सो पा लिया और कुछ अब बाकी नहीं रहा। और ऐसी भरपूर अवस्था को लेकर मैं धीरे धीरे इस मुलाकात का सुख अनुभव करते हुए वापस इस साकारी दुनिया में, इस साकारी देह में विराजमान होती हूं। और जो खजाने मैंने अनुभव किए अब अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराने में मैं सहयोगी बनती हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन एक्सपीरियंस हमने किया, और ईश्वर को अपना दोस्त बनाना, खुदा दोस्त जैसे कहा जाता है, उस बात को हमने आज एक्सपीरियंस किया है। हम सब जानते हैं कि जब भी मुश्किल घड़ियां होती हैं, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, तो हम अपने उस खुदा दोस्त को याद करते हैं। हम सभी कहते हैं कि भगवान अब तुम्हें ही संभालना है सब कुछ। और शायद जब हमें जब फिजिकली हेल्प चाहिए होता है, जो हमें लगता है कि हमारे कोई दोस्त फिजिकली हमारी मदद कर सकते हैं, तो दोस्त बना लेते हैं, तो हर मुश्किल घड़ी में उसका हेल्प और सहारा लिया जा सकता है। और शायद इसी के लिए मेडिटेशन हेल्प भी करता है कि हम उस संबंध को स्थापित करें, हम जुड़ सकें परमात्मा से। तो आशा करते हैं कि आज के मेडिटेशन में आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कल फिर अगले दिन के कार्यक्रम को लेकर, एक नए योगासन को लेकर, कुछ बोध को लेकर और एक नए मेडिटेशन के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना बेहतर ख्याल। कल फिर मिलेंगे 21 दिवसीय इंटरनेशनल योगा डे के रन अप चैलेंज के लिए, जिसका नाम है संपूर्ण योग। नमस्कार।